आदरणीय उषाबेन जी,
ओम शांति। आज सुबह के सत्र में हमने कुछ गुह्य बातें सुनी श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के, और तीसरे अध्याय में कैसे ये जीवन एक यज्ञ है और इस जीवन रूपी यज्ञ को किस तरह शुद्ध रखना है, क्योंकि उसी से ही जीवन पूर्ण होता है। और उसके लिए और एक बहुत सूक्ष्म बात जो हमने देखी थी कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी आत्मा को जो नरिशमेंट चाहिए उसकी उत्पत्ति तभी होती जब कृपा वृष्टि हो, आशीर्वाद की वृष्टि। लोगों ने इसीलिए सोचा कि भाई जब भी बरसात नहीं आती है यज्ञ करो, क्योंकि जितना जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है तो उसी से ही अनेकों की आशीर्वाद की, कृपा की वृष्टि हम अपने ऊपर अनुभव कर सकते हैं। अभी हम सभी ने बहुत सुंदर ये गीत भी सुना कि परमात्म वरदानों की प्राप्ति करनी है, यही वो समय है जब भाग्य विधाता आकर के हम सब के ऊपर वरदानों की वृष्टि करते हैं। लेकिन ये वरदान प्राप्ति का आधार भी क्या है? एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक महात्मा जी थे, और महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे, एक राज्य की सीमा के बाहर उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई थी और वहां रहते थे। जो भी उस राज्य से कहीं बाहर आना जाना करते थे महात्मा जी को देख करके प्रणाम करते थे, और महात्मा जी अपने आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। कई लोगों को उस सिद्ध महात्मा से जो चाहिए था वो प्राप्त हो जाता था। कोई बीमार होते थे तो उन्हें स्वास्थ्य मिल जाता था, ठीक हो जाते थे। तो ऐसे सिद्ध पुरुष की बातें बहुत जल्दी समाज के अंदर फैलती है, लोग राज्य में आकर के बताने लगते थे, भाई राज्य की सीमा के बाहर एक ऐसे सिद्ध महात्मा है जिनका आशीर्वाद अगर मिल जाए, कोई भी बीमारी दुख आदि होता है ठीक हो जाता है। तो ये बातें वहां के राजा के कान तक पहुंचती है, और राजा बड़ा लालची था। उसने सोचा कि ऐसा महात्मा राज्य की सीमा के बाहर क्यों रहे, उन्हें तो राज्य के अंदर बुला करके स्थान देना चाहिए, ताकि राज्य के लोगों का भी कल्याण हो, ये राज्य का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। उसने अपने मंत्री जी को भेजा संदेश लेकर के कि महात्मा जी आप बाहर क्यों रह रहे हो, राज्य की सीमा के अंदर आकर रहिए, आपको जो भूमि चाहिए जितनी भूमि चाहिए राजा देने के लिए तैयार है, और अच्छा आश्रम बनाइए आप अपना, लोगों का कल्याण करिए, उसके लिए जो धन राशि चाहिए वो सोना मोहर भी राजा देने के लिए तैयार। जैसे ये संदेश प्राप्त हुआ तो महात्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कहा चलिए, तैयार हो गए राजा के पास जाने के लिए। वो कमंडल जो था बहुत गंदा था, बांस मार रहा था, वही कमंडल उठा करके चले। जब राजा के सामने आए तो राजा ने हाथ जोड़ के विनती किया कि महात्मा जी, आप राज्य की सीमा के अंदर आकर रहिए, आपको जो भूमि चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं, और वहां आश्रम बनाने के लिए भी आपको जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी देने के लिए तैयार है। महात्मा जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया, ये भर के सोना मोहर दे दीजिए। राजा ने जैसे ही कमंडल उठाया, बहुत गंदा था, बांस मार रहा था, उन्होंने दास दासियों से कहा कि ये कमंडल साफ करवा दो और साफ करवा के ले आओ। कमंडल एकदम स्वच्छ करके ले आए, राजा ने उसमें सोना मोहर भरी और महात्मा जी को दिया, और हाथ जोड़ के खड़े रहे, सोचा कि अभी महात्मा जी कोई आशीर्वाद देंगे, परंतु महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। जब महात्मा जी ने कुछ नहीं कहा तो राजा ने कहा, महात्मा जी कोई आशीर्वाद कर दीजिए, कोई वरदान दे दीजिए। महात्मा जी फिर भी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब राजा ने कहा कि महात्मा जी कुछ वरदान दे दीजिए, तो उस समय महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा, मैं बात समझा नहीं। कहा, जिस तरह तुम्हें ये सोना मोहर डालनी थी इस पात्र के अंदर, और ये पात्र गंदा था, तो तुमने गंदे पात्र में ये सोना मोहर नहीं डाली, क्योंकि कीमती है, पात्र को साफ करवाया। ठीक इसी तरह वरदान बहुत अमूल्य चीज है, आशीर्वाद बहुत अमूल्य चीज है, और उसको प्राप्त करने के लिए मन का पात्र साफ होना जरूरी है। अगर मन के पात्र में मैल भरा होगा, स्वार्थ भरा होगा, तो आशीर्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भावार्थ ये कि जितना जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा, ज्ञान की पराकाष्ठा उसमें होगी, परमात्मा की याद होगी, उतना ही परमात्मा के आशीर्वाद की वृष्टि का अनुभव कर सकेंगे, और वही सबसे श्रेष्ठ नरिशमेंट है हमारे माइंड के लिए, आत्मा के लिए। तो ये भाव भगवान का था। और फिर भगवान ध्यान की प्रक्रिया समझाते हैं कि हे अर्जुन, अंतरात्मा में चित्त का निरोध करके, ध्यानस्थ होकर कर्मों का मुझ में अर्पण करके, आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध करो। क्योंकि जब इंसान ध्यान में बैठता है, तभी युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है। सारा समय जब आप कर्म व्यवहार में बिजी रहते हैं, उस समय अंदर युद्ध नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही ध्यान में बैठेंगे कि कई प्रकार के विचार आने लगेंगे, और मन को एकाग्र करना चाहते ईश्वर की याद में, और अनेक सारे विचार जो मन के अंदर घर करने लगते हैं, तभी उसको हटाने की मेहनत जो करनी पड़ती है। और इसीलिए आज मनुष्य के शिकायत ये बनी रहती है, क्या करे, मन नहीं लगता है। ईश्वर में मन लगाना चाहते हैं, परंतु मन भटक जाता है, कहां जाता है, कभी उसका पीछा करके देखा कि मन जाता है तो कहां जाता है। तो देखा गया है कि मन हमेशा कोई न कोई कर्मेंद्रिय की चंचलता के पीछे ही जाता है। दिन भर में कोई बात ऐसी हुई हो, किसी से बात करते करते कोई बात मुख से निकल गई जो हमें उस व्यक्ति से कहनी नहीं चाहिए थी, निकल गई, स्वाभाविक रीति से। फिर कर्म में बिजी हो गए तो भूल गए, कोई बात याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही शांत चित होकर भगवान को याद करने बैठते हैं कि उसी समय वो व्यक्ति का चेहरा याद आता है, वो बात याद आती है कि अरे ये बात हमें उसको कहनी नहीं चाहिए थी, अब अगर उसने फलाने व्यक्ति को ये बात बता दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो बैठे भगवान के सामने मन चला गया, कहां गया? जो ये मुख ने चंचलता की उसके पीछे गया। कई चीजें हम अपने कानों द्वारा सुन लेते हैं, सुनते समय स्वाभाविक रीति से सुन लेते हैं, फिर कर्म में बिजी हो जाते तो बात ख्याल में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही शांत चित होकर भगवान को याद करने बैठेंगे उसी समय वो बात याद आएंगी कि उसने ये बात जो कही उसका मतलब क्या था, जरूर यही भाव था, ऐसे ही भाव था, उस बात के कॉन्टेक्स्ट में उसने ये बात, सारा मतलब और भाव निकालना शुरू करते। बैठे भगवान को याद करने, मन चला गया, कहां गया? ये कानों ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। कोई चीज आंखों द्वारा देख ली, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं गलत हो ही नहीं सकती हूं, मन चला गया, कहां गया? ये आंखों ने जो चंचलता की उसके पीछे गया। तो युद्ध का सही स्वरूप तभी खड़ा होता है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं और उसी वक्त काम, क्रोध, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा आदि विकार बाधा के रूप में भयंकर आक्रमण करते हैं। तो ये युद्ध है अंदर ही, इनको मिटाते हुए अंतरात्मा में सिमटते जाना और ध्यानस्थ होते जाना ही यथार्थ युद्ध है। जो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा के साथ इस युद्ध में रत रहता है वह कर्म के बंधन से छूट जाता है। इन सब से अगर ऊपर ले चले बुद्धि को, ध्यान भी लगने लगेगा। जिसने कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, जीत प्राप्त कर लिया है, वह बंधन से भी छूट जाएगा, कर्म भी उनके स्वतः श्रेष्ठ होने लगेंगे और मन विचलित नहीं होगा। तब अर्जुन का एक महत्वपूर्ण सवाल कि हे प्रभु, मनुष्य किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है, जो अर्जुन के सवाल थे आज के मनुष्य के भी यही सवाल है कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध अग्नि के समान है जो राग द्वेष के पूरक है, ये ज्ञानियों के निरंतर बैरी है, काम से ज्ञान ढका हुआ है, मन बुद्धि इंद्रियां इसके वास स्थान है। कहां रहते ये विकार? तो मन बुद्धि इंद्रिय इसके वास स्थान है, ये निरंतर बैरी है, और वास स्थान कहां है? भीतर ही है, बाहर नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को संयत कर, उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर, क्योंकि यह हृदय देश की अंतर जगत की लड़ाई है। स्पष्ट कर देते हैं भगवान कि यह स्थूल लड़ाई है ही नहीं, यह अंतर जगत की लड़ाई है। जो इंद्रियों को वश करता है वही ज्ञान विज्ञान से पाप का नाश कर सकता है। तो इसीलिए भगवान ने बता दिया कि रजोगुण से उत्पन्न ये काम और क्रोध, राग द्वेष उसके पूरक, और मन बुद्धि इंद्रियां उसके वास स्थान, जो इंद्रियों को भटकाती रहती है, चंचलता मचाती रहती है, और इसीलिए ध्यान नहीं लगता है। तब अर्जुन का पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल हम सब की तरह, क्या हम मन बुद्धि और इंद्रियों को संयत कर पाएंगे? क्या उसको वश करना सहज है? है, ये सभी का सवाल है मन का, कि क्या मन बुद्धि इंद्रियों को हम डिसिप्लिन में ला सकते हैं? तो बहुत सुंदर भगवान जवाब देते हैं कि कि अर्जुन इस शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्म बल को समझो, आत्मा का बल क्या है उसको समझकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। किसको मारने की बात है? कोई व्यक्ति को मारने की बात नहीं कही भगवान ने, लेकिन ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो, इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करता है। भावार्थ ये कि भगवान कभी हिंसक युद्ध की प्रेरणा दे ही नहीं सकता है। जैसे आज के युग के अंदर मान लो कि आपका बच्चा है और बच्चा गली में मोहल्ले में खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ, और कोई बच्चा बड़ा शैतान है, हर बार आपके बच्चे को परेशान करता रहता है, चीटिंग करता है, उसका मजाक उड़ाता रहता है, और आपका बच्चा रोते हुए आपके पास आता है कि ये बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है, खेलने नहीं देता है मुझे, मेरा मजाक उड़ाता है, रोता हुआ जब आपके पास रोज अगर आए यही कंप्लेन लेकर, तो आप उसको क्या कहेंगे? अरे मारो गोली, उसके साथ तुम खेलने क्यों जाता है, यही कहेंगे ना। अब मारो गोली उसको, उसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच कोई बंदूक उठाकर गोली मारने की बात की है, लेकिन भावार्थ ये है कि उसको छोड़ो, तुम नहीं खेलो उसके साथ, तुम खेलने ही जाता है क्यों है उसके साथ में, जब रोज रोज ये तंग करता है तो मारो गोली उसको, बहुत सारे बच्चे तुम दूसरों के साथ खेलो। ठीक इसी तरह भगवान ने भी अर्जुन को कहा मारो इन सबको। मारो का मतलब कोई सचमुच हथियार उठा के मारने की बात थोड़ी की है भगवान ने, लेकिन ये अंतर जगत की लड़ाई है कि तुम अपनी इंद्रियों को सेल्फ डिसिप्लिन में ले आओ, और सेल्फ डिसिप्लिन में ले आएंगे तो अपने आप तुम्हारा मन बुद्धि सब ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है जो भगवान ने कहा कि अर्जुन इस शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है जो सूक्ष्म है, और मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। इसलिए अपने आत्म बल को समझते हुए बुद्धि द्वारा मन को वश में करो। ये उदाहरण बहुत सुंदर याद आता है कि एक बार एक राज्य में एक व्यक्ति आया जिसके पास एक बहुत पुष्ट घोड़ा था, इतना बलवान घोड़ा था, हुष्ट पुष्ट एकदम, परंतु कोई उस घोड़े को वश नहीं कर पाता था, बड़ा तूफानी था। तो जब उस राज्य में आया तो उसने राजा से बात की, राजा से कहा कि हे राजन, मेरे पास एक घोड़ा है लेकिन ये घोड़े को कोई वश नहीं कर पा रहा है, और जो उसको वश कर लेगा मैं उसको ये घोड़ा इनाम के रूप में दे दूंगा। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे राज्य में एक से एक उस्ताद है घोड़े को वश करने वाले। कहा ठीक है। राजा ने समय दे दिया कि भाई आज दिन में सभी इकट्ठे हो जाए, सारे उस्ताद इकट्ठे हो जाए, घोड़े को वश करना है, और जो इस घोड़े को वश कर देंगे उसको वो घोड़ा इनाम के रूप में मिल जाएगा। सारे उस्ताद वहां जमा हो गए, सभी ने प्रयत्न किया उसको वश करने का, लेकिन घोड़ा वश नहीं हो रहा था। सामने से जाते थे तो एकदम उछलता था, पीछे से जाते थे तो भी लात मार देता था, नजदीक तक नहीं आने देता था। तो उस समय जब सारे उस्ताद निराश होकर के बैठने लगे, राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या हमारे राज्य में एक भी उस्ताद ऐसा नहीं जो ये घोड़े को वश कर सके। काफी देर से राजकुमार बैठे बैठे देख रहा था। राजकुमार ने राजा से कहा, मैं इस घोड़े को वश करना चाहता हूं। राजा ने कहा, जब इतने बड़े बड़े उस्ताद वश नहीं कर पाए तो आप तो कैसे वश कर पाएंगे। कहा, आप मुझे स्वीकृति दो, मैं वश कर सकता हूं, ऐसा मुझे विश्वास आ रहा है अंदर से। ठीक है। काफी देर से राजकुमार देख रहा था कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया गया था परछाई गिरती थी और वो परछाई देख करके भड़क रहा था। इसलिए जो कोई नजदीक जाने का प्रयत्न करता था, चाहे आगे से चाहे पीछे से चाहे कहीं से भी, तो भी घोड़ा उस परछाई को देख करके भड़क उठता था और नजदीक नहीं जाने देता था। राजकुमार ने क्या किया कि सबसे पहले घोड़े की दिशा को परिवर्तित किया और उस दिशा में खड़ा किया, उसको परछाई पीछे गिरे और फिर जाकर के उस घोड़े के ऊपर चढ़ गया। जब उसको परछाई दिखी नहीं तो बैठ गए और सबसे पहले लगाम खींच लिया, घोड़े को वश कर लिया। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक घोड़ा है, इस घोड़े को वश करना है, लेकिन घोड़े को वश करने में बड़ी मेहनत आ रही है। सबसे पहले हमें भी यही करना है कि घोड़े को वश करना हो तो उसकी दिशा परिवर्तित कर दो। आशाएं, ममताएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, आसक्तियां, ये सारी परछाई के रूप में है। और जैसे ही घोड़ा ये परछाइयों को देखता है तो भड़कता रहता है, उछलता रहता है। इसलिए इनको पीछे कर दो। और जैसे ये परछाई पीछे हो जाएगी, उसके बाद उस पर चढ़ करके सबसे पहले बुद्धि की लगाम से घोड़े को वश करो। इसलिए कहा, बुद्धि के द्वारा तुम मन को वश में करो। तुम श्रेष्ठ अति सूक्ष्म बलवान आत्मा है, तो आत्म बल को समझते हुए आत्मा की कैपेसिटी क्या है, उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, वो सात गुण ये समझते हुए, आत्म बल को समझते हुए फिर बुद्धि के द्वारा मन को वश करो। और ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। काम माना कामनाएं, इच्छाएं। इच्छाओं को अगर प्राथमिकता देंगे तो घोड़ा कभी वश होने वाला नहीं है। लेकिन आप कर्म को प्राथमिकता देते जाओ, आत्म बल को समझते हुए सतो गुण के आधार पर कर्म करने लगो, तो बुद्धि द्वारा मन को वश करना सहज हो जाएगा। ये इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ये विधि है ये मन रूपी घोड़े को वश करने की, और तभी हम उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं जीवन के अंदर भी। और फिर चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास योग बताया, और उसमें भी कई अर्जुनों के सवालों का जवाब दिया है। सबसे पहला सवाल जब अर्जुन का था कि हे प्रभु, ये ज्ञान आपने सबसे पहले किसको दिया, तो भगवान कहते हैं, इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य से कहा, सूर्य से मनु को यही गीता ज्ञान प्राप्त हुआ, मनु ने अपनी स्मृति में उसको संजोया, मनु से इक्ष्वाक को मिला जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वो लुप्त हो गया। अब सूर्य को मिला, सूर्य से मनु को मिला, भावार्थ यह है कि सूर्य को नहीं दिया जाता है, लेकिन सूर्य वंशी घरानों को, सूर्यवंशी घराने की जो आत्माएं थी सतयुग के अंदर, जो देवी देवताएं सूर्यवंशी थे, उन सूर्यवंशी आत्माओं को प्राप्त हुआ। मनु यानी चंद्र सूर्यवंशी आत्माओं से चंद्रवंशी आत्माओं को मिला ये ज्ञान, और उन्होंने अपनी स्मृति में संजोया और वहां से इक्ष्वाक को यानी द्वापर युग में, इक्ष्वाक यानी जो इच्छाओं के अधीन हो गए, ऐसे राज ऋषियों ने जाना। लेकिन द्वापर के बाद जब मनुष्य आत्माएं कलयुग के अंदर काम क्रोध आदि विकारों को महत्व देने लगे और तुरंत रिद्धि सिद्धि की चाहना करने लगे, तो इस महत्वपूर्ण काल में वो लुप्त हो गया। ये भाव था सूर्यवंशी आत्माएं, अर्थात आत्मा स्वयं प्रकाशित है जो सूर्य के समान है। इसलिए कहा कि आरंभ में विवश्वान मनुष्य, विवश्वान माना जो संस्कार रहित पुरुष की सूरा में जो स्वयं प्रकाशित आत्मा है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है, ऐसी आत्माओं को दिया गया। वो आत्माओं ने मन में, मन की स्मृतियों में उसको संजोया, मन से इच्छा में और इच्छा से, इच्छा तीव्र होकर संस्कारों में ढलकर यह योग क्रमशः आचरण तक भी पहुंचता है। उस अवस्था में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है जिसके प्रभाव के कारण वो लुप्त होने लगता है। जब मनुष्य रिद्धि सिद्धियों के पीछे लग जाता है तो मेहनत करना नहीं चाहता, पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, तो वो ज्ञान लुप्त हो जाता है, उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं जीवन के अंदर, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के द्वारा जीवन के अंदर सहज प्राप्ति करना चाहते हैं। यानी ये कलयुग तक भी आता है लेकिन उसके बाद वो लुप्त होने लगता है। और बार बार भगवान कल्प के आदि में ऐसे विवश्वान मनुष्य को फिर देता है ये ज्ञान। यानी हिस्ट्री मस्ट रिपीट, ये चक्र रिपीट होता है। जैसे कहा महाभारत के अंदर कि जब घर घर में महाभारत हो जाएगा तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो इस तरह एक चक्र है, ये काल चक्र है, और ये काल चक्र रिपीट होता है, तभी भगवान बार बार विवशवान मनुष्य को देता है, फिर वो चलता रहता है, उस ज्ञान की प्रालब्ध चलती जाती है, और फिर अंत में जैसे रिद्धि सिद्धि का संचार होने लगता तो लुप्त हो जाता है। वह सतगुरु परमात्मा अपने अनन्य भक्त आत्माओं के आश्रित है, विवश्वान मनुष्य को देता है, यानी उन भक्त आत्माओं के आश्रित है। वह जिस सतह पर खड़े हैं उसी स्तर पर रथी बनकर उत्तम अविनाशी रहस्य योग का वर्णन कर उन डगमगाते भक्तों को संभालते हैं। भगवान ही ऐसे भक्तों को संभालते हैं, तभी उनका मन वश में हो पाता है। तब अर्जुन का पुनः एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो, जन्म लेते हो? भगवान से पूछते हैं ये सवाल। तो उस समय भगवान ने कहा, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। तुम सब शरीरों को प्राप्त करते हैं, मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। भगवान कहते हैं, मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत हूं। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता। मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, यानी मैं किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। अब ये महावाक्य श्री कृष्ण तो बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का तो जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई, पुनर्जन्म भी हुए, जबकि भगवान कहते हैं कि मेरे स्वरूप का जन्म नहीं। कोई पिंड रूप में जन्म नहीं होता है, योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता। परमात्मा ने जब कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त, अव्यक्त माना मुझे कोई व्यक्त आकृति वाला शरीर नहीं है, तो वो अव्यक्त स्वरूप कौन सा है? अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, ये सारी क्वालिटीज उसकी बता दी। तो वो स्वरूप कौन सा होगा? तो जैसे पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा है। जैसे आत्मा अजन्मा अव्यक्त है, शरीर में प्रवेश करती है तब व्यक्त स्वरूप को धारण कर लेती है, वैसे उसके पिता परमात्मा भी अव्यक्त है, अजन्मा है। तो वो कौन सा स्वरूप? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप आज सुबह आपने देखा होगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है? प्रकाश पुंज, ज्योति पुंज। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है। तो आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति स्वरूप है तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति स्वरूप है, जिसकी पूजा भारत में ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं। ज्योतिर्लिंगम माना जो ज्योति की आकृति है, इसलिए शिव के साथ एक शब्द जुड़ता है, शिव शंभु। शंभु का ओरिजिनल शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू माना जो स्वयं प्रकट हुआ है, जिसको उत्पन्न करने वाला कोई माता पिता नहीं है, और जिसको नाम दिया सदा शिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले। तो भारतवासी ने 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी भारत के अंदर महान तीर्थ स्थान माने जाते हैं। वही स्वरूप की प्रतिमा की यादगार मुसलमान धर्म में भी है। मुसलमान धर्म में भी जब मक्का हज यात्रा पर जाते हैं तो वहां काबा का पवित्र पत्थर है, जिस पत्थर के पीछे कहानी है। और कहानी यही है इस दिव्य पत्थर की कि पहले मुसलमान धर्म में भी मक्का में 360 देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी, हर एक के अपने अपने इष्ट होते थे, 360 देवी देवताओं की मूर्तियां थी। परंतु जब मोहम्मद पैगंबर साहब आए तब उन्होंने कहा अल्लाह एक है। काफी रिवॉल्ट हुआ उस समय, खून खराबा हुआ कि ये कौन है जो कहता है कि अल्लाह एक है, तो हमारे ये इष्ट कौन है फिर? और इस रिवॉल्ट में कहा जाता है कि एक आकाशवाणी हुई कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, खून खराबा मत करो, मुझे इस स्वरूप में याद करो, और ऊपर से वो पत्थर गिरा, इसलिए उसको काबा का पवित्र पत्थर कहा जाता है। और उसी समय उसकी स्थापना मक्का में की गई, और उसी समय वो 360 देवी देवताओं की जो मूर्तियां थी उन सब मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया। और तब से लेकर के यही मान्यता रही कि अल्लाह एक है। वहां जब मुसलमान लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, शैतान को पत्थर मारते हैं, इस दिव्य पत्थर को चूमते हैं और अंत में अपनी बंदगी में एक लाइन जरूर कहते हैं, जिस लाइन के बिना उनका हज पूरा नहीं होता है। और वो लाइन है, हे परवरदिगार, परमेश्वर के लिए कहा है, हे परवरदिगार नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो, तब उनका हज कबूल होता है। उन्होंने कहा अल्लाह नूर है। नूर का मतलब, नूर माना रोशनी, प्रकाश, तेज। ज्योति मतलब ज्योतिर्लिंगम, हमने कहा तो ज्योति माना प्रकाश, नूर माना भी प्रकाश, ज्योति माना भी प्रकाश, तो बात एक ही है, अलग है। और आगे जाए, क्रिश्चियन धर्म के अंदर कहा जाता है कि मोसेस जब माउंटेन पर गए जहां उनको 10 कमांडमेंट्स मिले, उस समय उन्हें अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ, जिस ज्योति को देखकर उसने कहा यहोवा, द सुप्रीम लाइट। क्राइस्ट ने कभी अपने आप को गॉड नहीं कहा, उसने हमेशा यही कहा गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। और इसलिए अपनी अंतिम प्रार्थना में भी उसने भगवान से यही कहा कि हे प्रभु आप इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि उन्हें पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। आज भी वेटिकन सिटी अगर चले जाएं, जो पोप की गद्दी है, उस वेटिकन सिटी में चर्च में किसी व्यक्ति की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा का दिव्य स्वरूप प्राप्त होगा, जिसको क्रिश्चियन ने लाइट कहा, मुसलमानों ने नूर कहा, हिंदुओं ने ज्योति कहा। बात एक ही है या अलग है? एक ही है। और आगे जाए, गुरु नानक देव ने बड़े स्पष्ट शब्द में कहा, एक ओमकार निराकार निर्वैर सतनाम अकाल मूरत जोनी। बहुत सुंदर रीति से महिमा गाई है परमात्मा की, जितना स्पष्ट किसी ने नहीं किया। और इसीलिए दिखाते, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी शिव की महिमा गाई थी। और आगे जाए, महावीर स्वामी ने किसका ध्यान किया? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर दिखाते हैं, और 24 तीर्थंकर सभी को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। किसका ध्यान कर रहे हैं? उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा, उन्होंने परमात्मा को उस निराकार स्वरूप में ही दर्शाया, और यही कहा उसको सिद्ध शिलापति जो सर्वश्रेष्ठ है। आज भी जैनी लोग जब महावीर स्वामी के निर्वाण दिन पर प्रार्थना करते हैं तो यही कहते हैं कि आपने जो शिव धाम को प्राप्त किया वो गति हमें भी प्राप्त हो। वो शिव धाम कौन सा है? शिव कौन है? महात्मा बुद्ध ने किसका ध्यान किया? आज भी जापान चले जाओ, 3 फुट की ऊंचाई पर 3 फुट दूर बैठ के एक थाली के अंदर लाल पत्थर रखा जाता, जिसको कहते करनी का पवित्र पत्थर, जिसको नाम दिया गया है चिंकोन शेकी। चिंकोन शेकी माना जो शांति का दाता है। और इसीलिए उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं कि हमारा माइंड पीसफुल हो जाता है, शांति मिलती है। पारसी लोग जब ईरान से भारत आए थे तो जलती हुई ज्योत को लेकर के आए थे, और आज भी जब उनका नया मंदिर स्थापित होता है, अग्यारी जिसको कहते हैं, वहां अखंड ज्योत निरंतर जलती रहती है, तो सर्वधर्म मान्य एक ही है। जिसको किसी ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, ईश्वर कहा, प्रभु कहा, मालिक कहा, जो भी कहा है, तो वो एक ही ना। नाम अलग अलग है, स्वरूप हर धर्म में एक ही है, जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, मैं स्वयंभू हूं, मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन का दूसरा सवाल कि हे प्रभु आप किस परिस्थिति में और कब प्रकट होते हैं? इस संसार में कब आते हो, किन परिस्थितियों में आते हो? तब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, यानी जब जब, हर बार आता हूं ये नहीं कहा, मैं सर्वव्यापी हूं ये भी नहीं कहा, कहा जब जब परम धर्म और परमात्मा के प्रति हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूं। हर युग की बात ही नहीं आती है, जब जब तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। और यहां अवतरण से अभिप्राय पुनर्जन्म लेना नहीं है, अपितु पुनः अपने स्वरूप को प्रकट करना। और तब आगे कहते हैं किन परिस्थितियों में कब, तो कहा परित्राणायम साधुनाम, यानी परम साध्य परमात्मा के समीप ले जाने वाले विवेक वैराग्य और दैवी संस्कारों को निर्विघ्न प्रवाहित करने इस संसार के अंदर, और दुष्कृत्य के कारक काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि विकारों का पूर्ण विनाश करने के लिए, और परम धर्म सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ऐसे युगे युगे आता। तो कब परमात्मा को आना चाहिए, कब आना चाहिए, आपका विवेक क्या कहता है, कब आना चाहिए? सत्युग में आना चाहिए, त्रेता में आना चाहिए, द्वापर में आना चाहिए, कलयुग में आना चाहिए? कलयुग में ही आना चाहिए। अगर भगवान द्वापर युग में आए और अधर्म का नाश कर दे और सत धर्म सनातन धर्म की स्थापना करके जाए, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, घोर अधर्म का युग, तो क्या गीता के ज्ञान से घोर अधर्म के युग की स्थापना हुई? इसलिए कहा, वो कहानी जो शुरू में ही मैंने बताई कि 50 विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया जाए और हर एक के कान में एक मैसेज दिया जाए, परिवर्तित हो जाता है। तो इसी तरह परमात्मा के संसार में अवतरण के समय का भी परिवर्तन हो गया कि वास्तव में वो आते हैं कलयुग के अंत में, जब अधर्म चरम सीमा पर है, उस समय वो आकर के अधर्म का नाश और एक सनातन धर्म की स्थापना सतयुग की स्थापना करके जाते हैं। तब तो बात बैठती है गीता के भगवान की कि हां परमात्मा अधर्म का नाश और एक सत धर्म की स्थापना करते हैं। युग का तात्पर्य यहां सत्ययुग त्रेतायुग नहीं है, लेकिन जब संसार में तामस गुण भरपूर हो जाते हैं और चारों ओर वैर विरोध हो, जब तामसी गुण ही कार्य करते हैं और मनुष्य में आलस्य निद्रा प्रमाद का बाहुल्य हो जाता है, मनुष्य कर्तव्य को जानते हुए उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं, निषिद्ध कर्म को जानते हुए उससे निवृत्त नहीं हो सकते हैं, इस प्रकार युग धर्म के उतार चढ़ाव पर परमात्मा प्रकट होते हैं, ऐसे समय पर आते हैं। तो हर युग की बात ही नहीं है, लेकिन कलयुग के अंत में ही भगवान आते हैं और आकर के अपना दिव्य कार्य करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, जो इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता है। तब अर्जुन का पुनः एक सवाल कि हे प्रभु, तो कौन उसे देख सकता है और समझ सकता है? ये तो हम सब का भी सवाल आएगा ये बातें सुन करके कि अगर भगवान को ये चरम चक्षु से देखा नहीं जा सकता है, तो कैसे देख सकते समझ सकेंगे? तब भगवान कहते केवल तत्वदर्शी यानी ज्ञान और तपस्या के द्वारा जो पवित्र बनते हैं और वितराग भय और क्रोध से मुक्त होते हैं, वे मेरे इस जन्म और कर्म को देखता है और मेरा साक्षात्कार कर सकता है। आत्म साक्षात्कार करने वाला ही इस अवीर्य भाव को समझ पाता है कि परमात्मा किस वितरागी में अवतरित होते हैं, किस में आते हैं, तभी समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए अब तक अर्जुन श्री कृष्ण को देख करके वही समझता रहा कि ये तो मेरे दोस्त है, मित्र है, मित्र भाव रहा। लेकिन जब भगवान ने ये बात कही कि मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, मेरे कर्म को भी तुम नहीं देख सकते हैं, तब अर्जुन का दिमाग ठनका, तो फिर ये कौन बोल रहा है, जिसको मैं देख रहा हूं वो कौन है फिर, और ये बोलने वाला कौन है फिर। फिर भगवान आगे इस अध्याय में कहते कि हे अर्जुन, कर्मों की गति अति गुह्य है। बात तो थोड़ी चेंज कर दिया यहां भगवान ने, अपने स्वरूप के बात बारे में कहने के साथ साथ। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि तभी तुम कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते। पहले आत्मा का ज्ञान दिया, स्वधर्म का परिचय कराया, फिर परमात्मा ने चौथे अध्याय में अपना परिचय दिया, और हर बार कर्म के साथ उसको जोड़ा गया है। आत्मा का ज्ञान, स्वधर्म के आधार पर भी कर्म करने की आवश्यकता क्या है, और परमात्मा के ज्ञान के साथ भी कर्म करने का महत्व क्या है, उसको जोड़ा गया। और बहुत सुंदर बात कही है यहां कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह बुद्धिमान योगी है, जिसके कर्म का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है तथा सांसारिक आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होती है। भगवान की याद में जो कर्म करेंगे उन कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होगी, वह ज्ञान रूपी अग्नि से विकर्मों को भी भस्म कर देता है। अब जब यहां ये कहा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और भगवान कहते कर्म में अकर्म और कर्म अकर्म में कर्म देखता है, वो बुद्धिमान है, अर्थात क्या, इसका भावार्थ क्या है। कर्म को तो हम सभी जानते हैं, अकर्म मतलब जिस कर्म के फल की प्राप्ति नहीं है, जिस कर्म करने के बाद फल नहीं मिलता है। कैसे, अगर एक उदाहरण मैं दूं कि मैंने एक आम की गुठली जमीन में रोपा, उसको रोपित किया, ये कर्म मैंने ही किया, एक बीज को बोना, ये कर्म मैं अपने हाथों से कर रही हूं। उस बीज को सींचना, पौधा निकला, और उस पौधे से धीरे धीरे वृक्ष बढ़ने लगा, और उस वृक्ष के ऊपर फल लगा, वो फल तोड़ के मैंने खाया, दोनों कर्म मैं ही कर रही हूं। बीज बोना, ये कर्म भी मैंने किया, उसके ऊपर जो फल लगा वो फल तोड़ के खाना, ये कर्म भी मैंने किया। दोनों कर्म में कोई अंतर है, दोनों कर्म में कोई अंतर है, क्या कहेंगे, दोनों कर्म में कोई अंतर है? बीज बोना भी कर्म है, फल खाना भी कर्म है, हाँ, कोई अंतर नहीं। बीज बोने का जो कर्म है ये बिगिनिंग है, शुरुआत है, और फल खाने का जो कर्म है वहां समाप्त हो जाता है। बीज बोने का कर्म जो है इतना पावरफुल है कि उससे मुझे हजारों फल की प्राप्ति होती है, लेकिन फल खाने का जो कर्म है उसका कोई दूसरा फल नहीं मिलता, सेटिस्फेक्शन, दैट्स इट एंड इट्स ओवर। फल खाने का दूसरा फल नहीं मिलता है, बीज बोने का फल मिलता है, फल खाने का कोई फल नहीं, संतुष्टि हो गई, पूरा हुआ। ठीक इसी तरह कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, तो बीज बोने का जो कर्म है वो श्रेष्ठ कर्म, वो कर्म है, सही कर्म है, क्योंकि उससे मुझे फल की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन फल खाने का जो कर्म है वो अकर्म है। अकर्म माना जिस कर्म का दूसरा फल नहीं मिलता है, वहां वो समाप्त हो जाता। अकर्म वो कर्म की समाप्ति है। तो बुद्धिमान योगी कौन है? जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में पुनः कर्म को देखता है। भावार्थ ये कि बीज बोने का कर्म तो किया, फल खाने का कर्म करो, लेकिन फल खाने के बाद उसको फेंक नहीं दो, वो बीज को पुनः बोलो। तो अकर्म में कर्म, अकर्म में पुनः कर्म, श्रेष्ठ कर्म किया और उस फल की प्राप्ति, ये फल कोई भी खाए तो उससे बंधन नहीं बनता। इसलिए कहा जिसके कर्मों का आरंभ और फल की प्राप्ति में कामना का त्याग है, मेरे लिए ही मैं कर रही हूं ये नहीं, कोई भी स्वीकार करे इसका फल, तथा सांसारिक आश्रय से रहित हो और परमात्मा की याद में नित्य तृप्त रहे, नित्य तृप्त है, उसके कर्मों में कोई त्रुटि नहीं होगी। फिर वो ज्ञान रूपी शस्त्र से, अग्नि से विकर्म, विकर्म माना विकारों के वशीभूत किया गया कर्म, विकृत कर्म, उसको भस्म कर सकता है। किससे? श्रेष्ठ कर्म से। कर्म से अकर्म, अकर्म में पुनः कर्म, और उसमें अगर आसक्ति नहीं है तो उससे विकर्म को, यानी विकृत कर्म का खाता जो है, उसको भी हम भस्म कर सकते हैं। कितनी गुह्य गति ईश्वर ने बताई है कर्म की, कि महान बुद्धिमान योगी इस रूप में कि फल खाने के बाद भी उसमें भी श्रेष्ठ कर्म का रास्ता ढूंढ लेते हैं और पुनः बोने का कार्य कर लेता है। ये है कर्मों की गुह्य गति। और फिर भगवान को अर्जुन पूछता है कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, कौन सा यज्ञ हमें करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, सर्व यज्ञों से ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है और परम कल्याणकारी है। ये इस समय जो हम ज्ञान सुन रहे हैं इसको क्या कहेंगे? ये ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ और परम कल्याणकारी है, क्योंकि महान पाप आत्माएं भी इस ज्ञान नैया द्वारा संसार सागर को पार कर देती है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान भी विकर्मों को भस्म कर देता। नॉलेज इज पावर। नॉलेज में वो शक्ति है, ज्ञान में वो शक्ति है जो विकर्मों को भी, यानी अज्ञान को ही नष्ट कर देता, जो अज्ञान ही विकृत कर्म करने का बीज है, उस अज्ञान को नष्ट कर देता। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ अति श्रेष्ठ है। सर्व विकर्म एवं साधनों की आसक्ति और मोह को समाप्त कर ज्ञान और योग की परिपक्व अवस्था से आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाती है। ये गुह्य गति जिसने समझ लिया हो कर्म की, वो आत्मा को शुद्धि के रास्ते पर ले जा सकते हैं, और जो उसका विकर्मों का खाता है, पाप कर्मों का खाता है, उसको समाप्त कर सकते हैं। और फिर पांचवें